कहानी नंबर 12, वो कामयाब हो गया। 110 पेज पे नेकी का सफ़ीर। वो बहुत गरीब नौजवान था, भरपूर जवानी के आलम में भी अल्लाह का डर इसके रगो रेशे में समाया हुआ था। वो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता था। शैतान इस पर हर तरह के दाव पेच लड़ाता, लेकिन इसे अल्लाह की मदद हासिल थी। वो रिस्के हलाल कमाने के लिए गलियों में सौदा सलफ बेचता था। एक दफ़ा इसे ऐसी औरत का सामना करना पड़ा जिसे हलाल और हराम की कोई तमीज़ ना थी। वह हराम का इर्तकाब करते हुए ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करती थी। ये नौजवान इसके घर के सामने अपना सामान लेकर पहुंचा। इसने दरवाज़े की ओट से झांका, फिर इस नौजवान को बुलाया और कहा, ज़रा अपना सामान अंदर ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर इसे हराम के करने की रغبत दी, यानी उसने फ़ोर्स किया उसको गलत काम करने पे। नौजवान चिल्लाया, माशाल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं इस घनौने रास्ते का राही नहीं, यानी मैंने ये गलत काम कभी नहीं किया। इस फरिश्ता सिफत नौजवान ने यौम हिसाब का तذکرہ किया और बताया कि यहाँ की तमाम हराम लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, हसरतें ही हसरतें बाकी रह जाएंगी। इस दिन इंसान के अज़ा जिनके ज़रिए से वो लज्जतें लेता रहा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, वही इसके खिलाफ़ गवाही देंगे। टांगें गवाही देंगी कि अल्लाह ये हम पर चलकर तेरी नाफरमानी के लिए गया। हाथ गवाही देगा, अल्लाह इसने मेरे ज़रिए तेरी हराम करदा चीज़ें थामी। ज़ुबान बोलेगी, अंग अंग यानी बॉडी पार्ट्स गुनाहगार के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। फिर इसने जहन्नुम की आग और अल्लाह के अजाब से डराया और बताया कि क़यामत वाले दिन जिना करने वाले लोग जहन्नुम में उल्टे लटकाए जाएंगे, इन पर लोहे के कोड़े बरसाए जाएंगे। जब जानी तकलीफ़ की शिद्दत से चीखें मारेंगे और मदद के लिए फरियाद करेंगे तो फरिश्ते पूछेंगे, ये कैसी आवाज़ें हैं? तुम लोग तो खूब कह कहे लगाते थे, बहुत खुश होते थे, बड़े अकड़ अकड़ कर चलते थे। तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का बिल्कुल खौफ ना था, तुम्हें ज़रा भी हया ना आती थी। इस नौजवान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया, या उम्मत मुहम्मदिन मा अहदुन अगैरा मिन अल्लाही अन यरा अब्दहू औ अमतहू तज़नी, या उम्मत मुहम्मदिन लव तालमून मा आलमू लदहिक्तुम कलीलं वलबकैतुम कसीरा। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं कि वो अपने ग़ुलाम या बांदी को बदकारी करता देखे। ए उम्मत मोहम्मद, अगर तुम इसको जान लो जो मैं जानता हूँ, तो तुम्हें बहुत कम हंसी और बहुत ज़्यादा रोना आए। इसने वो दिन याद दिलाया जब नबी ने ख्वाब में मर्दों और औरतों को देखा, वो तनूर की तरह तंग जगह में बिल्कुल नंगे थे। इस तनूर का ऊपर वाला हिस्सा तंग और नीचे वाला हिस्सा खुला था। वो बहुत बिलक बिलक कर फरियाद कर रहे थे। जब इनके नीचे आग का शोला भड़कता तो इसकी सख्त तकलीफ़ से वो बहुत चीखते। नबी ने पूछा, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया, ये जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं, क़यामत तक इन्हें इसी तरह अजाब होता रहेगा। आखरत का अजाब बहुत सख्त और अटल है। हम अल्लाह तआला से दरगुजर और माफ़ी का सवाल करते हैं। शैतान ने इस औरत पर फिर हमला किया। इसके नफ्से अम्मारा ने कहा, चलो कुछ नहीं होता, जिना कर लो, फिर तौबा कर लेना। वो बोला, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, जो औरत मेरे लिए हलाल नहीं, मैं कैसे इसकी तरफ देखूँ? मैं अपने रब की हुरमतों को कैसे पामाल करूँ? यह हरगिज नहीं हो सकता, अल्लाह हमें देख रहा है। हम मखलूक से तो छुपते हैं, मगर खालिक के सामने मुसलसल गुनाह किए जाते हैं। वो कुछ देर सोचता रहा और वहाँ से निकलने की तदाबीर सोचने लगा। इसने दरवाजे पर नज़र दौड़ाई तो बदकार औरत ज़ोर से चिल्लाई, अल्लाह की कसम, अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी न की तो मैं शोर मचा दूँगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं ये कह दूँगी कि इसने मेरी इज्जत लूट ली है, इसके बाद तुझे मौत के मुँह में धकेल दिया जाएगा। या जेल की सलाखों के पीछे वो पाक दामन नौजवान अल्लाह के डर से कांपने लगा। इसे यकीन हो गया कि यह औरत अपने घनौने इरादे से बाज आने वाली नहीं। इसने एक तदबीर सोची और इस औरत से कहा, मैं बैतुल खला में जाना चाहता हूँ। औरत ने बैतुल खला की तरफ इशारा किया, वो वहाँ दाखिल हुआ, रोशनदान की तरफ देखा जो बहुत तंग था, फिर दूसरा तरीका सोचने लगा जिसके ज़रिए वो गुनाह के इर्तकाब से बच जाए। इसने लैट्रीन की तरफ देखा, वहाँ गंदगी थी। इसने फौरन गलाजत उठाई और अपने जिस्म, कपड़ों और हाथों पर मल ली। फिर वो औरत के पास पहुंचा। वो इसे देखते ही तैश में आ गई, इसका सामान इसके मुंह पर दे मारा और धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया। वो रास्ते में चलता जा रहा था और बच्चे इसके पीछे पागल पागल का आवाज़ा कस रहे थे। इसने घर पहुंचकर गुसल किया, बदकारी से बचने और पाकबाजी की राह में इस्तकामत का मुजाहरा करने के सिले में अल्लाह ताला ने इसे ये इनाम दिया कि फिर इस नौजवान के बदन से हमेशा खुशबू के झोंके आते रहे, हत्ता कि एक दिन वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिला। जी, ये सही बुखारी की रिवायत है, निकाह 5221 नंबर की हदीस है और 7047। कितना खूबसूरत आइडिया, बुराई को डी ग्लैमराइज कर दो, ये है इसका मैसेज। पूरी कहानी का टॉपिक जिना था ना, आपके बच्चे, शौहर, बेटियां, आप खुद, कोई भी किसी ऐसी चीज की तरफ जरा सा भी इंक्लाइंड हो तो ये बेहतरीन तरीका है। और मैंने, मुझे लगता है तलबीस इब्लीस के दौरान या किसी ऐसे शैतानी हथकंडों के दौरान पढ़कर भी एक कॉल सुनाया था, उन्होंने भी यही कहा था। ये तलबीस इब्लीस जो इमाम इब्ने जौजी की है, आई थिंक सोनी का ये कॉल है, नौजवान लड़कों को कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी लड़की में कशिश महसूस हो, होती है अट्रैक्शन, शैतान डालता है, और फी जमाना जो हालात हैं उसको देखें तो औरतों को देखकर औरतों को कशिश महसूस हो, तो कहाँ फिर गैर जिंस ना करें। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि जब किसी लड़की की तरफ तुम्हें रग़बत महसूस हो तो उसकी गंदी चीज़ों को सोचो, पखाना, पसीना, नाक, गिद्ध, आँखों से जो आती है। तो जब तुम सोचो कि अच्छा उसके साथ भी तो ये सभी कुछ होगा ना जो किसी के साथ होता है, तो तुम्हें उसके अंदर से कशिश कम महसूस होगी। आप इस एक वाक्य से आइडिया लीजिए, अल्लाह ना करे कभी किसी को इस तरह के हालात में मजबूर होना पड़े तो ये बेहतरीन तरीका है। यहाँ आपको हज़रत यूसुफ़ भी याद आ रहे होंगे। फिर आप देखिए कि यहाँ जो चीज़ पढ़ने के दौरान थी, अमूमन तो ये जुनून मर्द के दिमाग में आता है, औरत तो ऐसी नहीं होती। अब जब एक औरत एक मर्द को माइल करे तो मर्द के पास तो कितने ही जवाब मौजूद हैं। गरीब भी था, तनहा भी था, पहल औरत कर रही थी, और अगर वो इस तरारी हालत में इस जुर्म का इर्तकाब कर भी लेता और फिर उस पर देखे अगर वो शोर मचाती कि इसने मेरे से बुराई की, तो चूंकि ये सऊदी अरब से लिखी हुई किताब है तो उस मुल्क के कानून में इस लड़के को मार दिया जाता है एक औरत के साथ बदकारी के इल्ज़ाम में, और इल्ज़ाम भी साबित हो जाता। यानी उस लड़के के पास कितनी बातें मौजूद थी। और जब इस तरह की दिल फेंक सोसाइटीज़ हों तो मर्दों को तो अपना हिसाब रखना और अपने ऊपर काबू पाना और भी मुश्किल लगता है। तो ये ऐसे वाक्यात अच्छे तरीके से, अच्छे मामलात में हमें अपने बच्चों के साथ भी शेयर करने चाहिए। डी ग्लैमराइज कर दो। कभी कोई आपका बेटा आके कहता है, मामा मुझे फलां लड़की से मोहब्बत है, ये है, वो है, दिस है, तो जैसे कहना चाहिए कि उनको फील ना हो, इनविजिबली कुछ करके आप उसको उस लड़की की इस तरह की चीज़ों के जरिए से बताइए कि सब एक ही जैसे होते हैं। आप देखिए ना कि एक लड़का है, एक लड़की की मोहब्बत में शिकार है। अब वो लड़की सुबह उठ के ब्रश ना करे, कितनी बू आएगी, आप सोचिए ना, पसीने में चलकर आए उसके पास से कितनी बैड स्मेल आएगी, आएगी ना। तो वो जो कशिश होती है वो कम हो जाती है। सिर्फ चमकती दमकती चीज़ों को बाहर से आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, ह्यूस्टन में थी मैं, तो हम एक मस्जिद में गए नमाज के लिए, तो मस्जिद के लेडीज़ नोटिस बोर्ड पे एक लेटर लिखा हुआ था और उसमें कुछ इस तरह के ऊपर मैसेज उन्होंने लिखा भी हुआ कि हर वो लड़की जो किसी भी गैर मुस्लिम लड़के की मोहब्बत का शिकार है वो मेरा ये ख़त ज़रूर पढ़े। किसी ने उसको ट्रांसलेट करके भी डाला हुआ था। सारी बात का खुलासा क्या था, एक मुस्लिम लड़की ने अपनी स्टोरी लिखी हुई थी कि मैं भी इस तरह स्कूल कॉलेज में गई, फिर मुझे वहाँ अपने क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई। वो गैर मुस्लिम था, मैं मुस्लिम थी, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में अंधी थी। मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा लड़का ये है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, माँ बाप ने तो नहीं मानना था, और आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो बिल्कुल माँ बाप नहीं मानते थे, उनको पता था कि ये कोई हक नहीं है लड़की का। किस्सा मुख्तसर, कहती मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर उस लड़के के साथ शादी कर ली, कोर्ट मैरिज की, उसके घर चली गई। वो फिर जो बातें उसके बाद उसने लिखी हुई थी ना, दैट वर जस्ट डिस्गस्टिंग। कहती थी कि वो लड़का जिसकी मोहब्बत में मैं अंधी थी, जब मैं उसके घर में उसकी बीवी बन के आई और मैंने उसका जो किरदार तो बाहर होता है ना, जो मैंने उसकी फिजिकल हाइजीन देखी, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। कहती थी शराब के नशे में वो धुत आता था रात को लेट और बिस्तर पे वॉमिट करता था और मैं उसकी वॉमिट समेट समेट के थक गई। तहारत का, सफाई सुथराई का, स्तंजे का उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर मुझे यकीन नहीं आता था कि ये वही लड़का है जिसकी मोहब्बत में मैं इतनी शदीद थी, आज मुझे उससे नफरत हो रही है। लेकिन चूंकि वो इस्लाम नहीं था, ईमान नहीं था, उसको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता था। फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर मार कुटाई हुई, फिर कैसे इसने अपनी जान छुड़ा कर उससे फिर अपने आप को वापस लाई, क्या किया। तो वो ये कहानी लिख के कहती है कि अगर मेरी ये कहानी पढ़कर कोई एक बच्ची अपने गलत इरादे से बाज आ जाए तो मैं समझती हूँ कि मेरी इस बात का मकसद हासिल हो गया। तो डी ग्लैमराइज द सेंस, ये भी एक काम है। आज हमारी नस्लें और हम खुद भी देखिए चमकते तमकते रैपर से मुतासर होकर चीज़ें खरीद लेते हैं। सोसाइटी बहुत ग्लैमरी है इस वक्त, फन फ्रॉलिक हैंड हेम्प्टी डम्प्टी दिस दैट दैट, ये सिर्फ ऊपर ऊपर है, अंदर खुशी नहीं है। सर में दर्द लेकर घर आएंगे। अगला वाक्य भी बहुत ही खूबसूरत है, पेज 115, सच्ची तौबा। एक नौजवान सहाबी जिसे लोग माइस के नाम से जानते थे, इसकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इसे फिसलाया, इसे एक अंसारी की लौंडी पर माइल कर दिया और राहे हक से हटाने की कोशिश की। माइस शैतान के जाल में फंसा और इस लौंडी को तन्हाई में ले गया। अब ये दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था। वो बुराई को इन दोनों के लिए नहायत खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तुग्यानी का शिकार हो गए। जब माइस अपने जुर्म से फारिग हुआ तो शैतान ने इसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। गुनाह की आग इसके दिल को जलाने लगी। दुआ करें हमारे भी दिलों को गुनाहों की आग जला दे। वो बेकरार होकर रूहानी तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपके सामने खड़ा हुआ। एहसासे गुनाह इसे तड़पाने लगा। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जिना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, वो दूसरी जानिब आ गया। वो बोले, अल्लाह के रसूल, मैं शैतान के झांसे में आ गया, जिना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह तआला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया, यानी गुनाह सोने नहीं दे रहा। गुनाह इतना बेचैन कर रहा है कि वो परेशान है कि जल्दी से जल्दी मुझे हद लग जाए, कहीं ऐसी हाल में मर गया तो क्या होगा। गुनाह की आग ने इसका आराम छीन लिया, वो सब्र ना कर सका। नबी ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो। इसे निकाल दिया गया। वो चौथी मर्तबा फिर चला आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ये दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज़ नहीं पाते। आपने फरमाया, शायद इसने शराब पी हो इसलिए इसे ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, इसने माइस का मुंह सूंघा, इसे शराब की कोई बू महसूस ना हुई। आपने पूछा, तुझे पता है जिना किसे कहते हैं? इसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तकाब कर बैठा जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास आता है। आपने पूछा, अभी इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई, यानी उसके ऊपर एक्शन लिया। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आपने हुक्म दिया और इसे संसार कर दिया। जब इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और इसे दफन कर दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे, वो आपस में बातें कर रहे थे। बड़े गौर से सुनिएगा ये बात, क्या कह रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि इसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले, आगे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, इसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था, यानी बहुत ही डिफॉर्म्ड था, स्मेली था। जब आपने इस गधे को देखा तो पूछा, फुलां फुलां आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल, हम यहाँ हैं। आपने फरमाया उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आपने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माइस ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो इन्हें काफी हो जाए। मुझे इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। खुशखबरी है मायस बिन मालिक के लिए, वो जवानी की भूल का शिकार हुआ और अपने रब के दरमियान पड़े हुए पर्दे को पामाल किया। गुना ने इसे चैन से बैठने ना दिया तो इसने ऐसी तौबा की कि अगर उम्मत के दरमियान तकसीम कर दी जाती तो तमाम लोगों के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाती। ये सही बुखारी की हदीस 6820 और सही मुस्लिम 1695 और अबू दाऊद में 4428 है। बहुत मारूफ वाक़या, और अल्लाह के नबी से सहाबा कराम ने ये वाक़या सुना भी और कुछ लोग इसके गवाह भी हैं। तो इससे क्या पता चलता है, मैं जब इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि बड़ी बात है, मरने के लिए तैयार हो गया एक शख्स लेकिन दुनिया में इस गुनाह के साथ ना रहा। देखिए, एक होता है उस वक्त का जोश, बवाल जो गुनाह के कर वक्त बंदे के दिमाग में आता है। असल में तो देखा जाए तो ये बुरे इंसान नहीं थे, शैतान एकदम कोई टेम्पटेशन डाल दे और इंसान गलत काम कर ले। और ये जो नबी सल्लम का इससे बार बार मुंह फेरना था, आप इग्नोर कर रहे थे। हुक्म भी यही है कि बात हुक्मरानों तक मत लेकर जाओ। हाँ, जब हुक्मरान तक पहुंच जाए और इकरारे जुर्म या फिर जुर्म साबित हो चुका हो, फिर वो पीछे नहीं रुक सकता। तो नबी सल्लम ने यही किया। लेकिन जब वो बार बार और 3 दफ़ा आकर जब उन्होंने कहा तो ये इकरार है, ये आप कन्फेस कर रहे थे, तो फिर अल्लाह के नबी के पास और कोई रास्ता नहीं था इसके कि उनको फिर रजम किया जाए। और आप देखिए कि क्या उस वक़्त उनके ईमान की हालत होगी जब उनको पता हो था कि मैं अगर नबी के पास जाकर कहूँगा तो डेफिनेटली आप मुझे रजम करेंगे। घर होते, तौबा कर लेते, अल्लाह से माफ़ी मांगते। तो इसका अंदर कि ईमान अंदर ठुका हुआ था। गुनाह कर लेना भी बात है, लेकिन गुनाह पे शर्मिंदगी होके तौबा कर लेना भी अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम मिसालें होंगी इस बात की कि गुनाह करने के बाद बंदा मौत के मुंह में चला जाए। और इससे ये भी पता चलता है कि आपने पूरी तहकीक करवाई। यहाँ तो कम लफ्ज हैं, हदीस में आप देखें तो और भी इससे ज्यादा खुल के सवाल पूछे गए थे कि कहीं तुम सिर्फ हाथ लगाने को जिना तो नहीं कह रहे, सिर्फ तुमने उस औरत को छुआ है इसको तो जिना नहीं कह रहे, यानी पूरा वो प्रोसेस। और सहाबा कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी को कभी इतनी खुल के बात करते नहीं देखा, लेकिन जो इस वक्त रिसर्च या तफ्तीश के दौरान आप कर रहे थे, क्योंकि एक शख्स के जान जाने का मसला था। और फिर ये भी चीज़ देखिए कि आपने गॉसिप को कितना बुरा कहा। असल बात ये देखने की, कभी किसी जगह कोई फ्लर्ट हो, कोई स्कैंडल हो, लोग कितनी बातें करते हैं। वो जुर्म करने वाला बच जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उसके ऊपर बातें छांटी उनके साथ पता नहीं क्या होगा। आप पढ़ चुके हैं सूरत नूर में, सिर्फ 20 कोड़ों का फर्क है, जिना जैसा फेल हो जाना या करना और दूसरे के ऊपर उसकी बातें डालना, सिर्फ 20 कोड़ों का फर्क है। एक में सिर्फ जुबान ने चस्का लिया है, दूसरे में इंसान का नफ्स भी इन्वॉल्व हो गया। तो हमेशा ऐसी बातों को पीछे डाल दे। चस्केबाजी दोस्तों में, तुमने सुना फलां का मियाँ, फलां का बेटा, फलां की बेटी, आप कह के मैंने ये बात नहीं करनी, मेरे सामने नहीं करें। देखिए, इसको अल्लाह ने ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई इल्ला मन जुलिम में बता दिया। छठे पारे की पहली आयत की आप तफसीर सुने, अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुराई का इजहार खोल खोल कर किया जाए, हाँ मगर जिस पर जुल्म हो। तो उसकी किस्में हैं, कोई अपना मसला बयान कर रहा है, अदालत में बात है, किसी दीनदार से मशवरा लिया जा रहा है, वो एक राय लेना वो एक और बात है, लेकिन एक दोस्तों में बैठकर सिर्फ बातों में बातें करना ये इजाज़त नहीं है इसकी। जी, यानी जहाँ भी बात जो भी जिससे कर रहा है, नंबर एक सच हो, एग्जेजुरेशन ना हो, इनडायरेक्ट बात कर दी जाए। तीसरी बात यह है कि फिर उस बात को बस वहीं छोड़ दें। सब कुछ करता है काउंट, लेकिन फिर भी अच्छी नीयत से भी आप दोस्तों में दूसरे का मामला नहीं शेयर कर सकते। जब जुबान ज़दे आम हो जाती है ना बात, तो वो फिर हवाओं में फैल जाती है। कहीं भी आपको नेट से कोई चीज़ मिली, कोई आपके पास ऐसी पोस्ट आ गई, आपने कोई वीडियो देख ली, वहीं ख़त्म करते हैं, डिलीट इट, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। वरना आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चलो मैं अपनी दोस्त को बता दूं, अच्छा सिर्फ मैं अपनी को, चलो मैं मियाँ से शेयर करूं, किसी को भी, हाँ उसमें भी नाम नहीं लेना चाहिए, और थर्ड पर्सन के देखे लोगों को क्या हो गया या ये बुरी चीज़ है, यानी उसको एक इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं, लेकिन खुल के बात नहीं करनी चाहिए। देखिए आप उसको क्यों बुरा कहते हैं जो खुद अपनी बुराई खुद दिखा रहा है, आप क्यों उसको बुरा कहें? फासिक होता ही वो है जो अपना गुनाह छुपाता ही नहीं है, वो डंके के चोट पे करते हैं। अब लोग न्यूड फिल्में बनाते हैं और इसी तरह के फजूल काम जो करते हैं, तो उसको तो कोई नेक नहीं कहेगा ना, वो तो वही चीज़ है ना। तो बस आपको मुझे अपने आप को कोशिश करके पॉजिटिव चीज़ों में रखना चाहिए, जितनी पॉजिटिविटी आपके मेरे अंदर आएगी उतनी इंशाल्लाह हमारी थोड़ी सी बात में भी असर होगा। बस जब खोल खोल कर बयान करने से भी वो असर नहीं रहता, ये भी याद रखिए। बच्चों को भी जब भी बात करें ना तो ढकी छकी बात करें। मैंने देखा कि आज के दौर में बाज़ दफ़ा बच्चे अपने माँ बाप या बच्चियाँ माओं के साथ इतनी ओपन बातें करती हैं इस किस्म की जो हम लोग तसव्वुर नहीं करते थे। अपनी किसी पर्सनल बात को भी अपने बड़ों से शेयर करने में हया माने थी, अब वो ओपनली बात करती हैं, बहने भाइयों के साथ बात करती हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि इतनी ब्लंडली बात करते हैं क्योंकि बाहर सुनते हैं ना। अब लव्स होमोसेक्सुअलिटी भाई बहन के साथ बोल लेते हैं आज के दौर में कि ये हो रहा है, ये चलता है, ये हैं, ये लेस्बियन है, ये गेइज्म है, ये लोग बच्चे बच्चियां आपस में घरों में और जो स्कूलों में मिलके बैठे हैं वो बातें करते हैं, उनको ये चुभती भी नहीं क्योंकि आदत हो गई है। तो बहरहाल हया बहरहाल अच्छी होती है। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।